शुक्ल यजुर्वेदी ईर्षावास्य उपनिषद का क्रमिक विचार प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन प्रांगण से दैनिक सत्संग प्रवाह के अंतर्गत हो रहा है। द्वितीय मंत्र पर कल हम लोग चिंतन कर रहे थे, आइए पुनः इस मंत्र का उच्चारण कर लें और फिर इसके अर्थ में हम लोग प्रवेश करेंगे। कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजे विशेच्छतम् समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ते एवं त्वयि नान्यथे तोस्ते न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजे विशेत शतम समाह एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्माधिकारी पुरुष के लिए भगवती श्रुति बहुत सुंदर आदेश दे रही है। इस मनुष्य जीवन में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष पर्यंत जीने की इच्छा करो, इस प्रकार से कर्म करते हुए ही जीने के साधन की अपेक्षा बजाय जो तुम अपने शरीर में नरत्व अभिमान रखने वाले लोग हो और कोई कल्याण का तुम्हारे लिए साधन नहीं है जिससे कर्म का लेप न हो। सुंदर संदेश श्रुति दे रही है जिसके इह और कर्माणि शब्दों पर कल हम लोग विचार कर रहे थे। इह का यहां पर अर्थ है इस मनुष्य जीवन में कर्मों को करते हुए ही, बहुवचन का प्रयोग किया कर्माणि कुर्वन्नेव, कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। कौन से कर्मों को करने की बात कही गई है? मुख्य कर्म के 2 विभाग किए गए, विहित कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म। यहां भगवती श्रुति कह रही है कि जो शास्त्र विहित कर्म है उन कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। प्रथम यह चला कि शास्त्र विहित कर्म क्या है। आचार्य शंकर लिखते हैं कर्माणि अग्निहोत्रादीनि, अग्निहोत्रादि जो कर्म है उन कर्मों को करते हुए। आदि शब्द का अर्थ और भी कर्म है। अग्निहोत्र एक नित्य कर्म बताया गया है जिसको प्रतिदिन करना चाहिए। संध्या वंदन नित्य कर्म बताया गया है। अहरह अग्निहोत्रम जुयात श्रुति बोलती है, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए। संध्योपासित संध्या उपासना करनी चाहिए, प्रतिदिन करो। इस प्रकार के जो शास्त्र विहित या नियत कर्म है, नित्य कर्म है, निर्धारित हैं और प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है। श्रुति कहती उन कर्मों का त्याग मत करो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यज्ञ दानम तपश्चैव यज्ञोदान तपक क्रिया न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ कर्म, तप कर्म, दान कर्म ये विहित कर्म है और कार्याणि करने योग्य है, इन कर्मों को करना ही चाहिए। बड़े विचारशील जो मुमुक्षु पुरुष होते हैं उन मनुष्यों को भी, चिंतकों को भी ये कर्म पवित्र करने वाले हैं। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले जो लोग हैं उनको भी पवित्र करने के साधन है। इसलिए श्रुति यहां पर बोल रही है कि जो विहित कर्म है उन कर्मों को करते हुए ही, कल विहित कर्मों का विभाजन करते हुए देख रहे थे, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निष्काम कर्म और प्रायश्चित कर्म। नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित चतुर्विध कर्म की तो बड़ी प्रसिद्धि है ही है, लेकिन भगवद गीता को देखने पर लगता है कि निष्काम कर्म के लिए बहुत बड़ा शास्त्र ने जोर दिया है। इसलिए ये है विहित कर्म जिनको नित्य करना ही चाहिए, मनुष्य को इसे जीवन में करना ही चाहिए, यूं समझिए। नित्य कर्म जो होते हैं वो प्रतिदिन करने के होते हैं, संध्या वंदन आदि, अग्निहोत्र आदि, दैनिक पूजा पाठ, ये नित्य करने के कर्म हैं जिससे हमारे अंतःकरण की, चित्त की निर्मलता होती है, शुद्धि होती है। दूसरे कर्म आते हैं जिनको करने के लिए श्रुति बोल रही है, नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक जो कर्म होते हैं वो सदैव प्राप्त नहीं होते, प्रतिदिन उनको करना जरूरी नहीं होता है। अब नैमित्तिक कर्म होता है, अतिथि घर में आवे तो उनका सत्कार होना चाहिए, आसन, जल, मधुर भाषा आदि के द्वारा उनका स्वागत होना चाहिए, आतिथेय का धर्म बनता है। मगर यह जरूरी नहीं होता है कि अतिथि प्रतिदिन घर में आवे ही सही, जब भी आ जाए उसके प्रति जो कर्म है वो करना ही चाहिए, नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। एकादशी आ गई, उपवास करना चाहिए, जब एकादशी आएगी तभी तो, किसी ने मंगलवार का नियम लिया, किसी ने सोमवार का व्रत करने का नियम लिया है, वो नित्य नहीं है। जब सोमवार मंगलवार आवे तभी तो होगा। तो जो शास्त्रीय नैमित्तिक कर्म होते हैं उसका भी त्याग नहीं होना चाहिए, श्रुति कहती उसको करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। तीसरा साधन आता है काम्य कर्म। लोग सोच सकते होंगे गीता पढ़ने वाले काम्य कर्म भी करने के लिए श्रुति बोलती है, हां काम्य कर्म को करना चाहिए। ये काम्य कर्म करने का विधान उन लोगों के लिए है जो मनमाना कर्म करते हैं, स्वेच्छाचार करने वाले जो लोग होते हैं उसके लिए श्रुति ने कहा कि ठीक है, तुम किए बिना नहीं रह सकते, करते हो और तुम्हारे मन की वासना की पूर्ति ही तो तुम्हें करनी है। तुम्हारे मन में धन की कामना हुई, धन की वासना जगी, तुम्हारे मन में परिवार की, कुटुंब की वासना जगी, तो वो जो शास्त्र विहित है, शास्त्र प्रतिपादित है, उस मर्यादा के अनुसार ही अपनी वासना की पूर्ति का काम करो। एक बालक के मन में राजगद्दी प्राप्त करने की वासना जग गई, ध्रुव के मन में आया, इधर राज सिंहासन पर चढ़ करके ही दिखाऊंगा, चढ़ करके रहूंगा। लेकिन उसके लिए दो उपाय थे। एक उपाय था कि उसका अधिकार बनता है क्योंकि बड़ी मां का बेटा है। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, आपको कथा तो मालूम है, एक सुनीति है और दूसरी सुरुचि है। सुनीति राजा उत्तानपाद की प्रधान पत्नी है और उसी का बालक है ध्रुव। तो जो प्राचीन परंपरा चली आ रही थी, राजघरानों का एक शिष्टाचार पद्धति हुआ करती थी, एक राजा के यदि तीन पुत्र, दो पुत्र, पांच पुत्र, सात पुत्र, जितने भी पुत्र होते, राजा के दिवंगत होने के अनंतर उस राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी कौन होता था? जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, सबसे बड़ा पुत्र होता था, प्रथम पैदा हुआ, उसी का अधिकार बनता था कि राजगद्दी का अधिकारी वही होता है। अब इस क्रम की दृष्टि से देखें तो ध्रुव जी के लिए एक अधिकार था, प्रथम पैदा हुआ है, प्रधान पत्नी से पैदा हुआ है, तो उस राज सिंहासन पर चढ़ने का अधिकारी तो वही बनता है। उत्तम तो उसका अधिकारी नहीं था, ध्रुव ही अधिकारी था। अब कोर्ट में भी तो जा सकता था, कानून से भी तो उस पर गद्दी को प्राप्त कर सकता था। एक तो उसका यह उपाय था कि कानून का सहारा लेकर के राजगद्दी प्राप्त कर लूं, और दूसरा ये उपाय था कि भगवान को प्रसन्न करके सब अनुकूल परिस्थिति बनवा करके उस गद्दी को प्राप्त कर लूं, भगवान की कृपा से वो गद्दी प्राप्त हो जाए। ठीक है, कोर्ट में जाकर के उस अधिकार को प्राप्त करना लौकिक दृष्टि से उसका अधिकार बनता है, लेकिन शास्त्र कहता है यदि किसी को गुड़ देने से ही दुश्मन मर जाए तो जहर पिलाने की कहां जरूरत है। एक अच्छे उपाय से, अच्छे साधन से ही उस चीज की, वस्तु की सिद्धि हो जाती है। रोते हुए बालक अपनी मां सुनीति के पास में गया और सुरुचि के बोले हुए जो कटु शब्द है, व्यंग्य है, सारी बात बताई कि मां मुझे अभागी बोल रही है, और कहा कि उस गद्दी को पाने के लिए तो भगवान की भक्ति करके प्रभु को प्रसन्न कर ले। तब जन्मदात्री मां भी कहती है कि यह बात बिल्कुल ठीक कही है उसने, इच्छित वस्तु को पाने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और प्रभु भक्ति, प्रभु आराधन करके उस बालक को क्या मिला, वही राजगद्दी प्राप्त हुई। यह विहित कर्म है जिसको हम अन्य किसी उपाय से प्राप्त न कर सके, उसके लिए देखना चाहिए कि शास्त्र में क्या उपाय बताया गया है। तैतरीय श्रुति में, शिक्षावल्ली में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया, जब आचार्य अपने अंतेवासी को उपदेश देते हैं, संपूर्ण वेदाध्ययन संपन्न होने के अनंतर आज वर्षों के बाद लौट करके पितृगृह जा रहा है, आखिर में आचार्य उनको उपदेश देते हुए कहते हैं, बहुत लंबा चौड़ा उपदेश है, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायात् मा प्रमद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। उसी प्रसंग में एक वाक्य आया है, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। जो आचार्यों के, गुरुजनों के, श्रेष्ठ पुरुषों के शास्त्र प्रतिपादित जो सुचरित है, अच्छे आचरण है, तुम्हारे लिए भी वही करणीय है। नो इतराणी, दूसरा यानी मन की वासना से किसी प्रवृत्ति में मत लगना, श्रेष्ठ पुरुष जिसमें लगे हैं वही तुम्हारे लिए करणीय है। इस प्रकार से जो काम्य कर्म होता है, उस काम्य पदार्थ की प्राप्ति करने का जो साधन भूत है काम्य कर्म है, वो उसी प्रकार से करना चाहिए जैसा शास्त्र में विधान किया गया है। निष्काम नहीं है, अभी कामना तो है, अब काम्य कर्म को शास्त्र विधि से करने का एक अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट ये आएगा कि जो अशास्त्रीय प्रवृत्ति हो रही थी, वासना जनित प्रवृत्ति हो रही थी, मर्यादा विहीन प्रवृत्ति हो रही थी, उस प्रवृत्ति से उसको निवृत्ति प्राप्त होगी, जिससे उसका अत्यंत जो कलुषित चित्त है उस चित्त में एक निर्मलता प्राप्त होगी, एक आस्तिकता जगेगी, एक वेद के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होगा। और जो श्रद्धा का भाव काम्य कर्म करने से भी यदि जागृत हो जाता है तो वो श्रद्धा तो आखिर में उसका कल्याण करने वाली हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। गीता में लिखा है कि वो ज्ञान किसको प्राप्त होगा, जो श्रद्धावान पुरुष होता है। श्रद्धा कब जगती है, तब जब उसके द्वारा हमने सोचा था वो कार्य सिद्ध हो जाए। वेद में तब श्रद्धा जगेगी जब वेद ने जो उपाय, जो साधन, जो माध्यम हमारे इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए बताया है, हमने उस साधक को ग्रहण किया और हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया। एक रोगी व्यक्ति है और उसको कह दिया कि भाई तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, उसका जप करो, तुम्हारा रोग निवृत्त होगा, शांति होगी। और जब महामृत्युंजय मंत्र का वो अनुष्ठान करता है, रोग निवृत्ति होगी, शास्त्र में श्रद्धा जगेगी कि नहीं, शास्त्र के प्रति एक सत्य भावना आएगी कि शास्त्र सही उपाय बताता है, मेरा कार्य सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार से जो शास्त्र में बताए गए विधान है उसके अनुसार करने पर, मनोरथ सिद्ध होने पर श्रद्धा बढ़ जाएगी। और जब श्रद्धा बढ़ेगी तो शास्त्र तो ऐसा है महाराज, पहले वो अंगुली पकड़ करके चलना सिखाता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति को परम स्वतंत्र कर देता है। शास्त्र वहां से व्यक्ति को उठा रहा है, जैसे बच्चे को अंगुली पकड़ करके चलाना सिखाते हैं, लेकिन वो 25 वर्ष का जवान हो जाता है, अब उसको सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अब दादा की अंगुली पकड़ने की जरूरत नहीं है, दादा को उसकी अंगुली पकड़नी पड़ सकती है, इतना वह स्वतंत्र हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से काम्य कर्म के माध्यम से शास्त्र मनुष्य को सत्य के पथ पर लगाने का अभ्यास करवाता है और चलते चलते आगे चल करके इसी मार्ग से वो परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए काम्य कर्म भी निषिद्ध कर्म नहीं है, शास्त्र के अनुसार करने के लिए शास्त्र ने कहा करो, यदि तुम्हारे मन में कामना है तो करो। धन तो कमाना है, अरे धन झूठ बोल करके भी कमा सकते हो, चोरी करके भी कमा सकते हो, और न्याय संगत अपना परिश्रम करके भी कमा सकते हो। इसलिए यहां कहा कि ये काम्य कर्म जो विहित है उसको करना चाहिए। कुर्वन नेवे है कर्माणि जिजि विशेष शतम समा। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, जब व्यक्ति चलता है तो कहीं न कहीं बीच बीच में उसकी जो वासना है वो इतनी हावी हो जाती है, इतनी प्रभाव डालती है कि कहीं धर्म मार्ग से वो भटकने लगता है और नहीं चाहते हुए भी गलत कर्म कर बैठता है। गीता में अर्जुन ने पूछा ये भगवान को, अथ के न प्रयुक्तो यम पापम चरती पुरुष अनिच्छन्न पे वार्षण ये बलादिव नियोजित है। महाराज एक बड़ी भारी समस्या है, समझ में नहीं आता कौन करवा देता है। मनुष्य जो पापाचरण करता है, सबको पता है कि पाप कर्म ठीक नहीं है, हम नहीं जानते किसी का अधिकार छीन लेना पाप है कि पुण्य है, सीधी सीधी बात है, जानते हैं कि पाप है। किसी को कटु वाणी बोल करके, किसी को व्यंग्य कस करके, किसी से को झूठ बोल करके, धोखा दे करके व्यक्ति अपना प्रयोजन तो सिद्ध करता है, लेकिन झूठ बोलना, किसी को व्यंग्य मारना, किसी को धोखा देना, ये पुण्य होगा कि पाप होगा? किसी का बुरा सोचना, अनिष्ट चिंतन करना, इसने मेरा काम बिगाड़ा है, मेरा नाश किया है, इसका सर्वनाश हो जाए, ये बुरा सोचने की जो भावना है इसको पाप ही तो कहेंगे ना। और सब लोग जानते हैं कि पाप का जो फल होता है वो ताप होता है, वो प्रतिकूलता होती है, पाप का फल अच्छा नहीं होता, दुखमय होता है। सब जानते हैं कि पाप का फल अच्छा नहीं है, लोग पाप के फल से तो डरते हैं, लेकिन पाप को करने से कितने लोग डरते हैं? पाप के फल से डरेंगे लेकिन पाप को करने से नहीं डरेंगे, उल्टा होते जाता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है अर्जुन कहता है अनिच्छन्नपि वार्षणय बलादिव नियोजित है, ऐसा लगता है कि उस पाप कर्म में कोई बरबस जोड़ रहा है, लगा रहा है, करो करो तुमको करना ही पड़ेगा, कौन करवा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी कामना, उसकी प्रबल इच्छा है, नहीं चाहते हुए भी वो जानता है कि परिणाम अच्छा नहीं होगा, फिर भी कर बैठता है। भागवत में आया, बहुत सुंदर प्रसंग आया है, अजामिल वाला प्रसंग। वहां सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित प्रश्न कर रहा है, पूछता है कि भगवान कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि पाप का फल अच्छा नहीं है, कोई दृष्ट कोई अदृष्ट रूप से पुण्य पाप दुख देने वाले ही होते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति जानते हुए भी उस पाप कर्म को कर बैठता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो उसका प्रायश्चित करके भी फिर पुनः उसी कर्म को कर लेते हैं। वहां बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था, कुंजर शौचवत, जैसे हाथी होता है वो गंगा में स्नान करता है। अब गंगा में स्नान करने का अर्थ है कि उसके पाप समाप्त हो गए, हुआ गंगा का स्वभाव है। लेकिन गंगा में स्नान करके चलो अंदर का पाप शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बाहर की गंदगी तो दूर हो गई, मैल तो दूर हुआ। और वही हाथी गंगा स्नान करके बाहर निकलता है और निकलते ही फिर वहां की धूल मिट्टी को सूंड में भर भर करके अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है, वो गंदगी फिर वापस लपेट लेता है, वही मैल वही धूल मिट्टी लगा लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते हैं जो कहीं हरिद्वार जाकर के प्रायश्चित कराएंगे, कहीं दान पुण्य करके प्रायश्चित कराएंगे, कहीं जप अनुष्ठान करके प्रायश्चित कर आएंगे और घर लौटने के बाद पुनः वापस उसी काम को शुरू कर दिया जिसका प्रायश्चित करके आए थे, ऐसा भी तो हो जाता है। तब क्या करना चाहिए? उसके लिए शास्त्र ने कहा प्रायश्चित कर्म होना चाहिए, पर प्रायश्चित कर्म इस प्रकार का होना चाहिए कि एक बार जिसके संबंध में जिसको लेकर के प्रायश्चित किया, इतनी सावधानी अवश्य होनी चाहिए कि जीवन में वो पाप कर्म दोबारा हमसे न हो। प्रायश्चित किया है भागवत के अजामिल ने, कुछ वासना वसात उसके शरीर से गलत कर्म हुआ, लेकिन जब देखा कि एक पुत्र के बहाने भी ईश्वर स्मरण करने पर यमदूतों के यम यातना से उसकी सुरक्षा हो गई, वो बच गया। उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित तो उसका यह हुआ कि संकल्प कर लिया कि आज के बाद इसे शरीर वाणी मन से कोई गलत कर्म नहीं होगा, और कान्य कुब्ज नगर को छोड़ करके भगवती गंगा के पावन तट पर बैठ करके सप्त स्रोत में भगवान का भजन करने के लिए चला गया। वो वास्तविक प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित का अर्थ यह नहीं कि पहले गलती हो गई उसके लिए कुछ दान पुण्य कर दिया और फिर दोबारा कर लो, बहुत बार ऐसा ही होता है। यह प्रेमपुरी में प्रवचन कर रहा था एक बार, 7-8 साल हो गए शायद उस बात को। एक हरियाणा का जवान, उसका नाम था निरैया, आया करता था, बड़ा विनोदी था। एक बार वो ही दूसरे माले में आया और मुझे पूछा कि स्वामी जी एक सवाल लाया हूं, बोलो क्या है। बोले हम लोग जब पूजा करते हैं तो भगवान के सामने अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं। मैंने उसको कहा शायद अगरबत्ती इसलिए जलाते हैं कि भगवान को सुगंधित द्रव्य समर्पित करने का विधान है, तो अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें से खुशबू निकलती है, सुगंधित द्रव्य होता है और वो अग्नि के माध्यम से होता है। क्योंकि देव जो होते हैं वो तेजस तत्व होते हैं, अग्नि प्रधान होते हैं, तो अग्नि के द्वारा ही उनको वो सुगंधित द्रव्य समर्पित किया जाता है। बोले नहीं महाराज, मुझे तो ये उत्तर मेरे गले के नीचे नहीं उतरता। तो मैंने कहा फिर इसका अर्थ तुमने कोई न कोई इसका अर्थ सोच करके रखा है, इसलिए मेरी बात तुमको अच्छी नहीं लग रही है, तुमने क्या इसका अर्थ समझा वही बता दो। वो कहने लगा स्वामी जी हम अगरबत्ती इसलिए करते हैं कि दिन भर मार्केट में रहते हैं, अपने धंधे में रहते हैं, कितनी झूठ बोलते हैं, कितने धोखाधड़ी करते हैं, कितना दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं, न मालूम क्या क्या हमारे से होता है। अब इतना कायिक वाचिक मानसिक कुछ भी करके हम आते हैं और शाम को भगवान के सामने जब उपस्थित होते हैं तो कहीं भगवान ने हमको समझ लिया कि दिन में वो गलत कर्म करने वाला तू ही है, वो झूठ बोलने वाला तू ही है, गलत सोचने वाला तू ही है। भगवान हमारे शक्ल को पहचान न लेवे इसलिए अगरबत्ती का धुआं कर देते हैं ताकि ठीक से भगवान भी न समझ पाए, बीच में धुआं खड़ा कर देते हैं। अब बताइए ये कौन सा प्रायश्चित होता है? दिन भर जो चाहा वासना के इसे युक्त होकर के किया और शाम को अगरबत्ती का धुआं करके भगवान को भी धोखा दे चले। प्रायश्चित कर्म का अर्थ ही ये होता है कि अनजाने कुछ भी हुआ अब हुए न वैसी मेरे मन आई ऐसी। एक संत लिखते हैं कि ना समझी में मेरे शरीर मेरी वाणी मन से कुछ भी अशास्त्रीय प्रवृत्ति हो गई है, लेकिन आज मुझे समझ में आ गई कि अशास्त्रीय प्रवृत्ति ही मेरे चित्त को कलुषित करने वाली है और संसार में भटकाने वाली है, इसलिए आज के बाद जो भी करूंगा विहित कर्म ही करूंगा, निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा। और जितना हो गया है गलत कर्म है उसको धोने के लिए, उसको दूर करने के लिए शास्त्र ने जो सत्कर्म बताए हैं, जो उपाय बताए हैं, उसको मैं करूंगा। वो प्रायश्चित करने के लिए श्रुति बोलती है उसको करना चाहिए। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म चतुर्थ आता है, पंचम कर्म है जिसको बोलते हैं निष्काम कर्म। ये चारों प्रकार के कर्म करने के अनंतर धीरे 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 चित्त की शुद्धि होने पर उस साधक को ये बात समझ में आती है कि मैं किसके लिए कर रहा हूं। अब तक वो मैं और मेरू के लिए कर रहा था, व्यक्ति अपने और अपने ऊं के लिए जीता है, किसके लिए दौड़ रहा है रात और दिन, मेरा भी हो और मेरे वालों का भी हो। परंतु इस प्रकार शास्त्र विहित कर्मों को करते करते इतना चित्त निर्मल हो जाता है, इतनी तो बात उसको समझ में आ ही जाएगी कि अगर मैं मेरे लिए न करूं तो मैं रहूंगा कि नहीं। अंतरात्मा जवाब देगी तो तेरे लिए नहीं करेगा तो भी जब तक तेरी प्रारब्ध है तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं रात और दिन पेट और परिवार की चिंता करता हूं। महापुरुष सुनाते हैं अरे पेट ही में पेट भरा तब पेट के खातिर क्यों भटके। जब यह शरीर किसी पेट के अंदर पड़ा था और उस वक्त भी ये पेट खाली नहीं रहा, पेट के अंदर भी पेट भरता रहा, किसने चिंता की थी इसकी। और आज उस पेट का सवाल कोई बात होती क्या करें महाराज, पेट का सवाल है, पेट का सवाल है, कितना बड़ा है तुम्हारा पेट। वो चिंता करने वाला प्रभु निरंतर चिंता कर रहा है। जब जन्म हुआ था इस शरीर का पेट में था तो खाली नहीं रहा, और पेट से बाहर आया तो बाहर आते ही मां के शरीर में दुग्ध पैदा कर दिया। वो मां के शरीर में दूध पैदा करने वाली शक्ति वही तो ईश्वर है, उस पर इतना तो विश्वास करिए। प्रारब्ध से सब कुछ इस शरीर को प्राप्त होना है। इसका अर्थ यह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यक्ति को निठल्ला होना चाहिए। श्रुति कहती है कुर्वन्येव कर्माणि, भगवती श्रुति भी कर्म का त्याग की बात नहीं कह रही है। कर्म को तो करो क्योंकि शरीर कर्म को करने के लिए ही दिया है, लेकिन चूंकि तुम इंसान हो केवल मैं और मेरू के लिए जी रहे हो तुम्हारी मानवता क्या होगी। निष्काम कर्म योग के लिए श्रुति जोर दे रही है। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं होता कि कामना रहित कर्म, अरे कामना तो कुछ न कुछ तो होगी, लेकिन जब सेवा की भावना है, जिस कर्म को कुछ पाने की दृष्टि से कर रहे थे आज उस कर्म को कुछ देने की दृष्टि से करिए, एक सेवा की भावना से करिए। और सेवा की भावना से जो किया गया कर्म है, जिस कर्म से चित्त की निर्मलता होती है, शुद्धि होती है, वही निष्काम कर्म है, अथवा यूं कहो कि क्यों करें, दूसरों के लिए क्यों करें, इसलिए करना है कि हमारा जो ईश्वर है, हमने जिस भगवान को माना है, वो भगवान केवल एक शरीर जितना नहीं है, वो भगवान एक परिवार जितना नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं तो पंक्ति आती अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वो विष्णु अनेक रूप में है। इसलिए जिस किसी को सेवा की आवश्यकता होती है, ये भगवान ही का तो रूप है, ईश्वर का ही तो रूप है। इसलिए भगवान ने यह शरीर दिया, ये साधन दिए है, ये समझ दी है, इसके द्वारा मैं समष्टि भगवान की सेवा में लग जाऊं, ये निष्काम कर्म योग होगा। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन, जो समष्टि रूप परमात्मा ईश्वर है, हमारा शरीर, हमारा साधन, हमारा विचार उस भगवान की सेवा में लग जाए, ताकि वो कर्म चित्त शुद्धि करके मुक्ति दिलाने वाला हो जाएगा, बंधन से मुक्त करेगा। इस प्रकार से ये पांच प्रकार के जो कर्मों का वर्णन है, भगवती श्रुति कहती है कर्माणि कुर्वन्नेव, इन कर्मों को करते हुए ही। दूसरी बात, एक शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण, पुस्तक तो सबके पास में नहीं होगी, कुर्वन एव इह कर्माणि जिजी विशेष शतम समा। कुर्वन एव इह, एव शब्द होता है और एव शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है ही, ये तो तुमको करना ही है, ही एव का अर्थ होता है कर्म करते हुए ही। तो कर्म तो स्वभाव से ही कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि कर्मों को करते हुए ही, माने जो शास्त्र विहित कर्म है उन्हीं कर्मों को करते हुए। विहित कर्म और निषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म का त्याग है और विहित कर्मों को ही करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। मन की वासना का गुलाम नहीं, हम शास्त्र से अनुशासित होकर के कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। और एव शब्द को यहां लगाया, मैंने एक प्रश्न उठा के छोड़ा था जिस दिन ये मंत्र उठाया था, मैंने कहा भाई 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, ये शास्त्र को कहने की क्यों आवश्यकता पड़ गई, इच्छा तो स्वाभाविक ही होती है, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा नहीं होती क्या? अरे भाई सबके सब तो तिजोरी वाला जी थोड़े हो जाएंगे, 100 वर्ष तक जीने की जो इच्छा है, लेकिन स्वाभाविक रूप से सबके भीतर में यही इच्छा होती है कि 100 वर्ष तक जीने की, जीवे जीवे जीवे, 100 वर्ष के बाद भी मरने की इच्छा कौन करता है, कौन चाहता है? कभी कभी यह होता है व्यक्ति परिस्थितियों को लेकर के अपने जीवन से हताश हो जाता है। सुसाइड करने वालों की भी तो कमी नहीं रह गई, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तब श्रुति कहती है इस मनुष्य जीवन को आप इतने हल्के में, इतने छोटेपन में मत लो, इसको इतना सस्ता मत समझ लो कि आप सोचोगे कि इस देह का त्याग करके और आगे फिर कुछ विशेष पालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करने का अर्थ है कि इस मनुष्य जीवन की कीमत को समझो। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आया है, दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। भगवान श्री राम कहते हैं मानस में ये मनुष्य जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी मुश्किल है मनुष्य का शरीर मिलना, वो भी इच्छा करते हैं कि हम भी मनुष्य बन जाएं, क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन कल्याण का उपाय संभव है तो मनुष्य शरीर में है। इसलिए मनुष्य शरीर में ही हम अपने कल्याण का साधन कर सकते हैं। ऐसा जो दुर्लभ मनुष्य शरीर है ये व्यर्थ न चला जाए, पूरे समय इसका हमको सदुपयोग करना है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर है, ये जितने भी शरीरधारी लोग हैं, प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सब में श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी है, बड़ी कमी है। है तो दुर्लभ है, श्रेष्ठ, परंतु कमी भी इसके भीतर में है, वो है क्षणभंगुरता। मिल तो गया, एक एक क्षण में नष्ट होते जा रहा है, तो जितने समय की प्रारब्ध हमें मिली है, आचार्य शंकर ने यहां पर कहा कि मनुष्य की जो उम्र है वो चूंकि 100 वर्ष मानी गई है, इसलिए कहा कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, अर्थात इसका अर्थ है कि पूरी अवधि, पूरा समय पा करके, और उस समय में हमें शिक्षण भंगुर मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर सके, साधना कर सके, परमात्मा की प्राप्ति कर सके। यदि ये अवसर चला गया तो अन्यत्र ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी, इसलिए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। आत्मकल्याण का उपाय इस मनुष्य शरीर से ही तो कर पाएंगे, इसलिए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हुए कुर्वन ये वही है कर्माणी जिजी विशेष सतम समा, और इस एव को आप कर्मों के साथ में लगा दो, कर्माणि एव कुर्वन, कर्मों को ही करते हुए, कर्म अकर्म और विकर्मा, तीन प्रकार के गीता में भेद आया, आप पढ़ा होगा, कर्मणो ये पिबोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है, कर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। वह भगवान ने बहुत सुंदर कहा है, तीनों को जानना चाहिए। यहां पर इसलिए यहां कहते हैं कर्माणि एव कुर्वन, भाई एक तो कर्म है, दूसरा विकर्म है और तीसरा अकर्म है, उनमें से दो का त्याग और एक को ही ग्रहण करना चाहिए। कर्माणि एव कुर्वन, कर्मों को ही करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, कर्मों को ही करते हुए। इससे स्पष्ट हो गया कि अकर्म और विकर्म का त्याग करते हुए, विकर्म का अर्थ होता है विरुद्ध कर्म, किससे विरुद्ध, जो कर्म श्रुति सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, लोक सम्मत नहीं है, वो जो विकर्म है, विरुद्ध कर्म है, उस कर्म का त्याग करो। और कर्माणि एव कुर्वन, जो विहित कर्म है, अभी यज्ञ यागादिक जो कर्मों का वर्णन किया था, उन कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। और तीसरा बताया गया अकर्म, अकर्म का अर्थ होता है कर्म का त्याग, जो करणीय है उस कर्म का त्याग, करणीय कर्म का त्याग न करो, बल्कि जो करने योग्य कर्म उनको करते हुए ही। प्राप्त कर्म का त्याग करने का परिणाम ठीक नहीं होता है। देखो भगवद गीता आप लोग पढ़ते हैं, अर्जुन कर्तव्य कर्म का, प्राप्त कर्म का त्याग करने को तैयार हुआ। विसृज्य स शर्म चापम शोक संविग्न मानस, शोक सागर में डूबा हुआ अर्जुन धनुष बाण छोड़ दिया, न योत्स्येति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूव, भगवान को बोला कि हे गोविंद, युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ युद्ध क्षत्रिय के लिए, और कहता कि युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। कर्तव्य का त्याग करके चुप हो जाना ये मनुष्य का काम नहीं है। जब वो कर्म भूमि में खड़ा है तो कर्तव्य का त्याग नहीं होना चाहिए, उसको करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आखिर में गीता में उत्तर दिया है, यदि अहंकार आश्रित्य न योत्स्येति मन्यसे मिथेश व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्षति। अर्जुन, यदि अहंकार का आश्रय लेकर के तुम यह कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये जो तुम्हारी धारणा है, तुम्हारा विचार है, एष मिथ्या एव, ये मिथ्या विचार है, दिख रहा है कुछ और समय आने पर कुछ और बात प्रकट हो जाएगी। त्वाम प्रकृति ही नियोक्षति, तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारी प्रकृति है, आखिर वो कर्तव्य में लगा देगी। समझ करके नहीं करोगे और प्रकृति के वश में होकर के करोगे तो प्रकृति के गुलाम बन जाओगे, और समझ करके प्रकृति को जीत करके शास्त्र के अधीन होकर के कर्म करोगे, यही कर्म तुम्हारा कल्याण करने वाला बन जाएगा। इसलिए गीता में कहा योग कर्म सुकौशलम, ये कर्म में बड़ी कुशलता है। जो कर्म का स्वभाव बांधने का होता है वही कर्म शास्त्र विधि से करने पर वो कल्याण करने वाला होता, चित्त की शुद्धि का साधन भूत होता है। इसलिए अकर्म को छोड़ना, उसका त्याग, और जो विरुद्ध कर्म है उसका भी त्याग, कर्माणि एव कुर्वन्, जो विहित कर्म है उन्हीं को करते हुए शतम समाज जीविषेत, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। एवं त्वयि नान्यथा इतस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ये उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो नरत्व अभिमानी है, जो शरीर और संसार में जी रहा है, उसके लिए कहा तुम्हारा जो व्यवहार पक्ष है इस प्रकार का होना चाहिए। परमार्थ स्थिति में पहुंचने पर उसकी स्थिति अलग है, उसके लिए पहले मंत्र में बोल दिया, वहां सब कुछ त्याग की बात कही, वित्तेष्णा पुत्रेष्णा लोकेष्णाया च समुत्थाय भिक्षाचर्यम चरंती की बात बताई। लेकिन जो नरत्व अभिमानी है, व्यवहार पक्ष में व्यक्ति जी रहा है, उसके लिए यही एक मार्ग है, यही एक रास्ता है, न अन्यथा इतः अस्ति, इसके अलावा तुम्हारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं आत्मकल्याण का। और यही कारण है भगवद गीता में जो भगवान ने इतना जोर दिया, कर्मयोग के ऊपर इतना जोर दिया, इस मंत्र को लेकर के ही जोर दिया है। कर्मयोग पर जबरदस्त वहां पर भगवान ने विचार दिए, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मण, भगवान ने कहा यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, भगवान ने कहा ये सारे बांधने वाले कर्म हैं, लेकिन यदि ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करोगे तो तुम्हें छुड़ाने वाला हो जाएगा। इस प्रकार न कर्म लिप्यते, उन कर्मों का लिपाई मानता नहीं होगी, कर्मों से चिपकोगे नहीं, कर्म भी होगा और कर्म से मुक्त भी हो जाओगे, चित्त शुद्ध होगा। वो पहले श्लोक की जो बात आई है उस मंत्र के अनुसार योग्यता प्राप्त हो जाएगी। इंसान में 3 गुण काम करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सत्वगुण प्रधान पुरुष होता है उसके लिए पहला मंत्र था ईशावास्यम इदम सर्वम। जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति होता है उसके लिए यह मंत्र आया कुर्वन् एव कर्माणि, जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, और जिस व्यक्ति में तमोगुण की प्रधानता होती है उसके लिए आगे मंत्र आएगा, जिसका विचार आपको कल देंगे। अगले मंत्र का जो विचार है इसका उपसंहार करते हुए हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।